10 अक्टूबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। भारत प्रशासित कश्मीर में सरकारी इमारत में छिपे चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों का अभियान जारी। इस साल का आर्थिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन और फिनलैंड के अर्थशास्त्रियों को।
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences to Oliver Hart and Bengt Holmström for their contribution.
इंदौर टेस्ट में भारत की न्यूजीलैंड पर बड़ी बढ़त। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन।
दो दिन की बढ़िया बैटिंग के बाद कोई भी इंडियन पिच वो हमेशा स्पिनर्स की तरफ होती चली जाती है और अश्विन जिस फॉर्म में है और साथ में रविंद्र जडेजा जिस स्पीड से गेंदबाजी करता है तेज, सेटल होने नहीं देंगे।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। भारत प्रशासित कश्मीर के पंपोर इलाके में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सुबह से जारी मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया है। सेना के मुताबिक इस सरकारी इमारत में दो तीन चरमपंथियों के छिपे होने की आशंका है। बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के अनुसार सेना ने पूरे इमारत परिसर को घेर लिया है और इमारत के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से अलग नहीं होंगे। महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियों को लेकर ट्रंप पर अपनी ही पार्टी के लोगों का दबाव था। राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान में हुई दूसरी बहस में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन इस मुद्दे पर ट्रंप को ठीक से घेर नहीं पाई हैं। इस बहस में ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर वो जीते तो हिलरी को जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भाषण में यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार माइक पेंस की सीरिया नीति से सहमत नहीं है। बहस के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए हिलरी क्लिंटन का कहना था, मुझे उम्मीद थी कि ट्रंप ऐसी ही बातें करेंगे। मैं जून से ही कहती रही हूं कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए फिट व्यक्ति नहीं है। कई लोग ये कह चुके हैं और अब धीरे धीरे लोग ये बात और भी जोर शोर से कहने लगे हैं। हिलरी क्लिंटन के शब्द। रूस ने सीरिया के टाटस इलाके में स्थायी नौसैनिक अड्डा बनाने की घोषणा की है। टाटस में पहले से भी रूसी नौसेना मौजूद रही है। पिछले हफ्ते रूस ने सीरिया में अपने वायुसेना अड्डे को भी स्थायी करने की घोषणा की थी। टाटस में मौजूदा बंदरगाह को रूस और बड़ा करने की योजना में है, जहां विमान सुरक्षा प्रणाली, पनडुब्बी रोधक सिस्टम और बड़े युद्धपोतों को तैनात किया जाएगा। पिछले हफ्ते ही रूस ने टाटस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की थी। ब्रिटेन में जन्मे ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के बेंगट होमस्ट्रोम को इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन दोनों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे परस्पर विरोधाभासी हितों से निपटने में अनुबंध लोगों की मदद कर सकता है। तालिबान सूत्रों के अनुसार एक प्रभावशाली सैन्य कमांडर कारी अजमल पूर्वी अफगानिस्तान में मारे गए हैं। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में अमरीका और अफगानिस्तान की सेना के एक छापे में कारी अजमल की मौत हुई है। कारी अजमल लश्करे जांगवी के प्रमुख थे और इस संगठन के संपर्क पाकिस्तान के तालिबान से भी रहे हैं। चीन के पर्यावरण जांचकर्ताओं ने जांच में पाया है कि देश के कम से कम 170 स्टील फर्म राष्ट्रीय प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। करीब 1000 फर्म्स की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि 170 फर्में चीन के नए पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रही है। इनमें से 29 कारखानों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि 23 कारखानों में उत्पादन कम करने को कहा गया है। दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का उत्पादन संभवतः रोक दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर की एक सरकारी इमारत में छिपे चरमपंथियों के विरुद्ध सुरक्षा कर्मियों का अभियान जारी है। सुबह से जारी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के दो लोग घायल हो गए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान कंट्रोल वाले कश्मीर में चरमपंथी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। इस बीच आज भी घाटी के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया और शिया नागरिकों को इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर स्थित एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आज सुबह 6 बजे आग लग गई, जिसके बाद चौकीदार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस का कहना है कि फायर सर्विस के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया तो इंस्टीट्यूट के होस्टल से फायरिंग हुई। बाद में 3.5 एकड़ पर फैले इंस्टीट्यूट को घेर लिया गया और सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने चरमपंथियों को खदेड़ने का साझा अभियान शुरू किया। गौरतलब है फरवरी में भी इसी इंस्टीट्यूट पर चरमपंथियों ने धावा बोला तो फोर्सेज ने 48 घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद 4 हमलावरों को मार गिराया। लेकिन इस ऑपरेशन में एक नागरिक और 3 पैरा कमांडोज भी मारे गए थे। ऑपरेशन में इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग नष्ट हो गई थी। आज की मुठभेड़ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इंटेलिजेंस सूचना पहले से थी कि श्रीनगर या हाईवे पर इस तरह का हमला किया जाएगा। सैनिक अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन को धीमी गति से जारी रखा गया ताकि जवानों का जानी नुकसान न हो। इनका कहना था कि देर रात में हॉस्टल पर बमबारी की संभावना है। 29 सितंबर को भारत द्वारा पाकिस्तानी कंट्रोल वाले कश्मीर क्षेत्र में चरमपंथियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बारामूला, हंदवाड़ा, शोपियान, पुलवामा और पामपोरा में ऐसे हमले हुए हैं। इनमें अभी तक 1 BSF जवान और 7 चरमपंथी मारे गए। इस बीच आज शिया नागरिकों की तरफ से इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध को एनफोर्स करने के लिए कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। ये प्रतिबंध शियों के आशूरा और सुन्नियों के मिलाद जुलूसों पर 26 वर्ष से जारी है। घाटी में अलगाववादियों की कॉल पर हड़ताल की जा रही है और कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने नवंबर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की घोषणा कर दी है, लेकिन जगह जगह छात्र रोज प्रदर्शन करके एग्जाम का बायकॉट कर रहे हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। करीब 3 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी ने उनकी सेहत पर अफवाहें रोकने का एक नया तरीका निकाला है। पार्टी की कोशिश है कि सोशल मीडिया के सहारे जयललिता के स्वास्थ्य पर उठने वाले सवालों से निपटा जाए। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जयललिता की अन्नाद्रमुक पार्टी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए अम्मा की सेहत पर उठने वाले सवालों और उनसे जुड़ी अफवाहों को निशाना बनाया है। इस कैंपेन की टैगलाइन है ऑल इज वेल विद अम्मा और माई CM इज फाइन, नो मोर र्यूमर्स, यानी हमारी मुख्यमंत्री ठीक है और अफवाहों की जरूरत नहीं। चेन्नई स्थित वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल बताते हैं कि इस सोशल मीडिया कैंपेन की जरूरत क्या रही होगी। वेंकटेश पेरुमल,
ऑफिशियली जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा था उस पे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। भर्ती होने के बाद अगले दिन ही अपोलो हॉस्पिटल ने रिलीज किया था कि उनका तबियत बीमार है और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन 4 दिन बाद उन्होंने बता दिया कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इंटेंसिव केयर में है। की वजह से क्या हो गया है कि जो मीडिया में अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से क्या हो गया, गलती इन्फॉर्मेशन अफवाह फैलाने लगेगा और अपने अपने तरफ से अपने अपने कहानी शुरू हो गया है।
तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता को 22 सितंबर के दिन चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद से उनकी सेहत को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। अस्पताल की तरफ से समय समय पर मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री की देखरेख करने वाले डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ी है। ब्रिटेन के एक इंटेंसिव केयर यूनिट एक्सपर्ट और दिल्ली के एम्स अस्पताल से एक वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल भी जयललिता के इलाज में जुटा हुआ है। अस्पताल जाकर उनका हालचाल लेने वालों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। तमिलनाडु राज्यपाल से लेकर राहुल गांधी तक उनका हाल लेने पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने अन्नाद्रमुक सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों से प्रशासन और कावेरी मुद्दे पर कुछ जानकारियां भी मांगी थीं, जिन्हें लेकर राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठे थे। राज्यपाल के इस कदम से पहले मुख्यमंत्री जयललिता का इलाज कर रहे अस्पताल ने जानकारी दी थी कि उन्हें लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो दरअसल जयललिता की अन्नाद्रमुक पार्टी इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन से क्या बताना चाह रही है, चेन्नई से वेंकटेश पेरुमल को सुनिए।
अभी सोशल मीडिया के द्वारा ADM की भी कोशिश ये रहा है कि अपना नेता अच्छा है, वो ठीक है और जल्दी छुट्टी होके वापस होके तमिलनाडु का पद पे आके बैठेगी और अपना राज्य करेगी।
जहां एक तरफ जयललिता के सैकड़ों समर्थक अस्पताल के बाहर खड़े उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं विपक्षी DMK पार्टी ने जयललिता के स्वास्थ्य पर सही जानकारी दिए जाने की मांग बरकरार रखी है। इस सब के बीच जयललिता की पार्टी ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने समर्थकों और विपक्षियों के कौतूहल को खत्म करने की एक नई योजना शुरू की है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
पाकिस्तान के नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के नए डायरेक्टर जनरल और मशहूर अदाकार जमाल शाह ने कहा है कि वो यूनेस्को के जरिए भारत से डांसिंग गर्ल की मशहूर मूर्ति को वापस लाने की मांग करेंगे। ये मूर्ति तो 1926 में सिंध में खुदाई के दौरान मिली थी और फिलहाल भारत में है। अनुमान है कि ये मूर्ति करीब 4,500 साल पुरानी है। हालांकि जमाल शाह का कहना है कि इस मांग का भारत और पाकिस्तान के संबंधों में हाल में आई तलखी से कोई संबंध नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ इस्लामाबाद से रजा हमदानी।
जमाल शाह ने कहा कि डांसिंग गर्ल का मुजस्मा मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुआ था और इसको तकसीम हिंद से कबल एक नुमाइश के लिए इंडिया ले जाया गया और ये कभी वापस नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि डांसिंग गर्ल मुजस्मा पाकिस्तान का मुस्तनद वर्सा है जो सिंध की जमीन मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान मिला था।
मैं समझता हूँ कि हमें अपने वर्से से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं जहाँ जहाँ है वो क्लेम करना हमारा हक है, और खासतौर पर डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो तो जब आप इंडस वैली की बात करते हैं उसकी एक इंतहाई अहम हैसियत है जी। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हमारे यहाँ PNCA से अमृता शेरगिल की एक तस्वीर गायब हो गई थी। अमृता शेरगिल एक बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी जो लाहौर की थी। पाकिस्तान को चाहिए कि उनको क्लेम करें कि वो हमारी आर्टिस्ट थी। बहरहाल उनकी एक पेंटिंग यहाँ से गायब हुई, वो इस वक्त इंडिया में है, जाहिर है किसी ने चुरा के बेची होगी वहाँ। तो मैं उस पेंटिंग के सिलसिले में भी कुछ करूंगा एज DG PNCA, ट्रेस आउट हो सके कि ये किनका काम था, और जिनके भी पास है उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी आप हमें ये वापस कर दें।
डांसिंग गर्ल का मुजस्मा तांबे का बना हुआ है और ये 4,500 साल पुराना है। ये मुजस्मा 10.5 सेंटीमीटर लंबा है और इसको 1926 में मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान दरियाफ्त किया गया था। बरतानवी माहिर आसार कदीमा मोर्टिमर व्हीलर ने इस मुजस्मे को दरियाफ्त किया था। उन्होंने इस मुजस्मे को कुछ इस अंदाज में बयान किया, मेरे ख्याल में ये एक 15 साल लड़की है जिसने सिर्फ बाजुओं पर ऊपर तक चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ये एक पुरएतमाद लड़की है, मेरे ख्याल में इस जैसी दुनिया में कोई और नहीं है। रजा हमदानी, BBC इस्लामाबाद।
डांसिंग गर्ल की मूर्ति पर विवाद। वहीं भारत का कहना है कि विभाजन के दौरान पुरातत्व विभाग का भी बंटवारा हुआ और इस क्रम में 12,000 कलाकृतियां ऐसी थीं जिन्हें दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया था। विभाजन के बाद पार्टीशन काउंसिल की देखरेख में मोहनजोदड़ो और तक्षशिला की कलाकृतियों को दोनों देशों के बीच बांटा गया। इसमें प्रीस्ट किंग की कलाकृति पाकिस्तान के हिस्से में आई जबकि इंडस डांसिंग गर्ल की कलाकृति भारत के हिस्से में आई। BBC संवाददाता सलमान रवि ने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन KN दीक्षित से बात की और पूछा कि पाकिस्तान का दावा कितना जायज है।
ये जो डांसिंग गर्ल है ये नेशनल म्यूजियम है कलेक्शन में, हमारे कलेक्शन में है, और इसको हम लोगों ने एक बार वो जब 1971 में पाकिस्तानी वार जो हुई थी ना, हाँ, तो उसमें हमने अपने उसमें उसको शिफ्ट किया था। तो उसमें कंट्रोवर्सी क्या है, इट इज द शेयर्ड हेरिटेज। उसमें मतलब जितनी उनके वहाँ के साइट थी उसमें तो पार्टीशन हो चुका था मटेरियल का भी, और वो और मटेरियल में ये है कि मोहनजोदड़ो में जो एक्सकेविशन हुआ है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में वो तो 1920-21 के है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट, इन दैट वे दे विल गो ऑन टेलिंग दैट सोहान वैली में जो स्टोरेज के टूल्स मिले थे वो भी लौटाने चाहिए, क्योंकि ये पार्टीशन हुआ था टाइम ऑफ 1947 उस कलेक्शन में ये इंडिया में, और वो जो प्रीस्ट है ना
जी क्रिश्चियन,
हाँ प्रीस्ट जो है जिसके दाढ़ी है, हाँ वो कराची म्यूजियम में, अबाउट 2-3-4 years बैक आई वॉज इन कराची, आई हैपेंड टू सी।
इंडिया की तरफ से भी कभी कोई क्लेम किए गए या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था।
इंडिया में क्यों नहीं, we have claimed कि जो भी हमारे से जो चोरी का सामान गया था,
जैसे सर कुछ याद है आपने
रिकॉर्ड सब है, ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन बना था, ये मेरा ख्याल है ये 1972 का कन्वेंशन
जी
यूनेस्को ने बना, ये बात थी कि जो चोरी से जो सामान बेचा गया था जैसे चोला ब्रोंजेस थे, मध्य प्रदेश का सामान था, फिर पहाड़ों से सामान था, रॉकफेलर कलेक्शन वाशिंगटन में अमेरिका वगैरह में सब, और कुछ सामान तो लौट करके भी आया इंडिया में। वो जो उनका जो नटराज था साउथ इंडियन का वो वहां से लौट गया, उस सामान हमारा ऑस्ट्रेलिया से लौटा है, फिर यूके से लौटा। दूसरा ये है जो बामियान का बुद्धा होता था तो उस समय काबुल म्यूजियम पूरा लूट गया था, हाँ देयर वाज अ टाइम व्हेन द काबुल म्यूजियम वाज लूटेड, तो वो सब सामान यूरोप में बिकाया इधर उधर बिकाया।
ये थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन KN दीक्षित।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल्ड।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। ब्रिटेन में जन्मे ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के बैंक्ट होल्मस्टॉर्म को इस साल इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा पूरा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
2016 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान के हैंसन ने की। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह निर्णय लिया है कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2016 का स्वेरियस रिक्स बैंक पुरस्कार ओलिवर हार्ट और बेंग्ट होल्मस्ट्रॉम को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान के हैंसन के शब्द। यह खबर सुनने के बाद ओलिवर हार्ट ने बताया कि वे आज सुबह 4:40 पर उठे और जैसे ही उन्हें यह खबर मिली सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और अपने छोटे बेटे को यह खबर देने के लिए जगाया। वहीं बेंग्ट होल्मस्ट्रॉम का कहना था कि यह खबर सुनकर वे खुद को काफी भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन दोनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी अनुबंध सिद्धांत पर उनके कार्य के लिए दिया जा रहा है। यह दोनों ही अर्थशास्त्री अमेरिका में काम करते हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि इन अर्थशास्त्रियों का काम कई इलाकों में राजनीति और संस्थानों की रूपरेखा बनाने की बौद्धिक बुनियाद के तौर पर रहा है। नोबेल कमेटी एट स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य पेर स्ट्रॉमबर्ग का कहना था, यह सिद्धांत वाकई में अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण रहा है, न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि दूसरे समाज विज्ञानों में भी। इसलिए फर्मों में कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर संवैधानिक कानून और राजनीति भी इसके जरिए विश्लेषित किए जा सकते हैं। मैं इन दोनों अर्थशास्त्रियों का आभार जताता हूँ कि इनके शोध के जरिए हम न केवल वित्तीय मसलों का विश्लेषण कर सकते हैं जबकि हम इसके जरिए अनुबंधों में निर्णय लेने के अधिकार, मालिकाना हक, संपत्ति अधिकार और दूसरे किस्म के अधिकार का भी विश्लेषण कर सकते हैं। नोबेल कमेटी एट स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य पेर स्ट्रॉमबर्ग के शब्द। अनुबंध सिद्धांत में अपना योगदान देते हुए इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे परस्पर विरोधाभासी हितों से निपटने में अनुबंध लोगों की मदद कर सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के प्रदर्शन के आधार पर उसका वेतन तय किया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन सेंट्रल बैंक देता है और मूल नोबेल पुरस्कारों में इसे 1968 में जोड़ा गया था। इस पुरस्कार के बतौर इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों को तकरीबन $100,000 की राशि साझे तौर पर मिलेगी। इससे पहले भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और गुरुवार को साहित्य के नोबेल के साथ ही इस साल के नोबेल पुरस्कारों की सूची पूरी हो जाएगी। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 8 मिलियन क्रोनर यानी करीब $930,000 दिए जाते हैं।
ब्रिटेन और फिनलैंड के अर्थशास्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं वंदना। वंदना का भी नमस्कार। मैं आप ही की तरफ से कह देता हूँ। शुरुआत में आज माफी के साथ करना चाहता हूँ। माफी उन लोगों से जिनकी चिट्ठियाँ इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाई हैं आज तक। माफी उन लोगों से जो हमें ईमेल भी भेजते हैं और पोस्टकार्ड भी भेजते हैं लेकिन हम किन्हीं कारणों से उनकी चिट्ठी शामिल नहीं कर पाते। एक पोस्टकार्ड हमेशा हर हफ्ते मेरी नज़रों के सामने आता है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उसमें लिखा क्या है। इतनी जल्दबाजी में लिखते हैं,
लिखावट की वजह से
लाल और हरे रंग की और नीले रंग की तीन स्याही से लिखते हैं और पंच करके वो पोस्टकार्ड अपना भेजते हैं हर हफ्ते लेकिन हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ने में कुछ नहीं आता। इसलिए गुजारिश ये है आप जो भी लिखें, आलोचना करें या आप तारीफ करें, कम से कम पढ़ने में आए।
हमारे बहुत ही पुराने श्रोता प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अमेठी से हैं, ये बोलना बहुत जरूरी है।
पूर्वा अमेठी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बहुत शिकायत रहती है ना हमसे।
तो चलिए, शिकायत ही है वाकई। ये कहते हैं कि नियमित श्रोता तो मैं हूँ ही लेकिन लगता है हमारे पत्रों के साथ घोर अपेक्षा हो रही है, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता
इनको
है।
इनको जगह भी मालूम है कि कहां डाला जाता है इनका पत्र। लेकिन ऐसा नहीं है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी,
कुछ हमारे श्रोता हैं जो लंबे अरसे बाद चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है उनको भी जगह दी जाए। कुछ श्रोता हैं जो हर बार टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणियों को भी हम शामिल करते हैं। आप जैसे हैं तो आप तो SMS हर कार्यक्रम के बाद करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है उसका जवाब हम न दे पाएं, लेकिन हमारी टीम में वो SMS चला जाता है, सब लोगों को मालूम पड़ता है। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र रखिए, आपकी चिट्ठियां जरूर शामिल होंगी।
ये पोस्ट कार्ड है सुधा पांडे का, जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी महिला श्रोता लिखती
हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही को खुशी होती है और हमें दुख होता है, रंज होता है।
आपको भी खुशी होती है।
मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, काम करने वाली हों या गृह कार्य में दक्ष हों, सब लिखें हमको, सब हमारे कार्यक्रम सुने।
जी, नियमित श्रोता हैं ये लिख रही हैं, शायद चिट्ठी उतनी रेगुलरली नहीं लिखती हैं। ये कह रही हैं कि आपसे हमसे पूछिए कार्यक्रम के लिए कहा है कई बार, जो हम ज़रूर सुनते थे, मेरे दादाजी सुना करते थे, और अब निवेदन है कि वो कार्यक्रम आप दोबारा शुरू करें।
सुधा जी, आपकी ही चिट्ठी नहीं, हमारे पास पिछले कई वर्षों में लगातार इस तरह की चिट्ठियाँ आती हैं कि हमसे पूछिए कार्यक्रम ज़रूर शुरू किया जाए, और हम ये कहते हैं कि अगर ये संभव हुआ तो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना मुझे दिखती नहीं। सुधा जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं अगर इस तरह की कोशिश हम करें और उसकी कोई संभावना हो तो ये कार्यक्रम होगा ही शुरू। जैसे विवेचना हुई वैसे हमसे पूछे भी शुरू हो सकता है, आप भरोसा तो रखिए।
एक और चिट्ठी लेते हैं, ये है महावीर स्वामी, डेहरा की ढाणी, ग्राम चुड़ला, सावलपुरा, सीकर, राजस्थान से,
यानी दिल्ली से बहुत दूर जगह है।
तो इनका कि पहला पत्र तो शामिल नहीं हुआ, तो लीजिए आज आपका पत्र शामिल हो गया।
हिम्मत नहीं छोड़ी इन्होंने लेकिन।
जी जी जी।
और भरोसा नहीं छोड़ा
जी। इन्हें SD बर्मन पर जो विवेचना थी वो उनको काफी पसंद आई। साथ ही इन्होंने कहा है, BBC की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठता, आपकी मेहनत वाकई रंग लाती है, दुनिया जहान विवेचना वगैरह वगैरह,
सब कार्यक्रम अच्छा इनको अच्छे लगते हैं। रेहान फजल की विवेचना पसंद आई तो लगातार सुनते रहिए, लेकिन चिट्ठी अब लगातार
शिकायत भी है इसमें कि ये जो प्रसारण है BBC हिंदी का, ये डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे।
अभी कुछ ही देर पहले एक चिट्ठी नहीं बल्कि एक श्रोता का फोन आया था, उन्होंने भी ये शिकायत की। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मोहन लाल शर्मा की ये जिम्मेदारी है, उनको ये काम सौंपा गया है और वो इसमें लगातार लगे हुए हैं कि इस तकनीकी समस्या का हल ढूंढा जाए और जल्द से जल्द ढूंढा जाए। बस मैं भरोसा आपको, कहीं ये ना लगे कि मैं नेताओं की तरह आपको भरोसा दिलाता हूँ, वो मकसद नहीं है
जी। अब कुछ ईमेल ले लेते हैं
जी।
हमने नीलम कटारा का इंटरव्यू प्रसारित किया था जो विदित मेहरा ने किया था,
उसको लेकर जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी माता जी जिन्होंने बहुत बड़ा कोर्ट की लड़ाई लड़ी
कई साल, 14 साल। जी जी, उस संदर्भ में काफी सारे ईमेल और चिट्ठियां आई हैं। इन्होंने कहा कि विदित मेहरा ने जो इंटरव्यू किया तो पहली बार मेरे श्रोता मिजाज को वो प्रभावित कर पाए।
ये कौन है लिखने वाले?
ये साहब हैं आशुतोष कुमार पांडे, जो लिखते ही रहते हैं, गांव पांडेपुरा, थाना ब्रह्मपुर, बक्सर, बिहार से।
जी, हाँ।
जी, शायद ऐसे कई लोगों ने लिखा है क्योंकि विदित अक्सर जो है वो फिल्म,
हाँ,
उन्होंने कहा कि धूम धड़ाके वाली इंटरव्यू करते हैं,
फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू करते हैं, और नीतीश कटारा की माता जी का जो इंटरव्यू हुआ था वो काफी गंभीरता से भरा हुआ था और उसमें दर्द तो था ही क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया।
और एक लिखते हैं, आदरणीय राजेश जोशी जी प्रणाम, आप मेरा पत्र क्यों शामिल नहीं करते? क्योंकि मैं राजस्थानी मारवाड़ी हूँ। बहुत ही इन्होंने,
कौन है लिखने वाले, जरा उनका नाम भी तो बताया
तो इन्होंने बहुत, मतलब बहुत हक समझ के ऐसा लगता है शिकायत की है। ये हैं जेठराम पवार।
जेठराम पवार, ये तो हमारे नौजवान श्रोता है, आपका नाम सबको याद हो गया। जी हाँ, जेठराम पवार 12वीं के छात्र थे, इन्होंने कई बार लिखा है और उनकी चिट्ठियां हम शामिल करते हैं। इस बीच नहीं शामिल हुई होंगी तो उसमें शिकायत करने की तो कोई बात नहीं, और ये लिखने का तो कोई मकसद नहीं है कि किसी एक खास जाति की वजह से हम आपका चिट्ठी शामिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिखिए, हम आपके चिट्ठियों को जरूर शामिल करेंगे।
जी बिल्कुल।
तो अब अगर समय हो चुका है, आप कहें तो मैं इजाजत ले।
बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।
आपके पत्रों के साथ थे राजेश जोशी और वंदना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कल का दिन विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का था, तो आज का दिन आर अश्विन का। उन्होंने आज 81 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 299 रन बना सकी। फिलहाल भारत के पास 276 रनों की बढ़त है। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
भारत ने जिस अंदाज में कल बल्लेबाजी की और पूरे दिन केवल दो विकेट गिरे उसे देखते हुए लगता था कि आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी दम कम दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज उसकी पहली पारी तीसरे दिन 299 रन पर सिमट गई। इससे पहले कल भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 557 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 258 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत के कप्तान विराट कोहली चाहते तो वो न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन दे सकते थे, लेकिन शायद ये देखते हुए कि टीम में केवल दो ही स्पिनर हैं और वो कितनी गेंदबाजी करते फॉलो ऑन नहीं दिया। इसके बाद आज के दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए थे। स्टंप के समय मुरली विजय 11 और चेतेश्वर पुजारा 1 रन बनाकर खेल रहे थे। गौतम गंभीर रन लेने की कोशिश में डाइव मारते हुए क्रीज तक पहुंचे, लेकिन इससे उनके बाजू और कंधे में चोट लगी और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। दूसरी तरफ इससे पहले आर अश्विन की घूमती गेंदों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चकरा गए। हालांकि लंच तक उनका स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। टॉम लैथम 53 रन बनाकर अश्विन के हाथों कोट एंड बोल्ड हुए। लंच के बाद केन विलियमसन को अश्विन ने बोल्ड किया, वो 8 रन बना सके। इसके बाद बारी थी रॉस टेलर की, जो स्लिप में खड़े रहाणे को कैच दे बैठे, उनका तो खाता तक नहीं खुला। फिर ल्यूक रॉन्की का भी यही हाल हुआ। आर अश्विन की गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप पर खड़े रहाणे के हाथों में गेंद समा गई, वो भी कोई रन नहीं बना सके। जबकि इसी बीच 72 रन बनाकर खेल रहे सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने आर अश्विन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद अश्विन की अंगुली से लगती हुई बॉलिंग एंड से जा टकराई। रन लेते हुए गप्टिल भी रन आउट हुए। इसके बाद जेम्स निशाम ने 71 रन बनाकर न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद की। पुछल्ले बल्लेबाज मिचेल सेंटनर ने 22, जीतन पटेल ने 18 और मैट हेनरी ने नाबाद 15 रन बनाकर जैसे तैसे न्यूजीलैंड की पारी को 299 रन तक पहुंचाया। आर अश्विन ने 81 रन देकर 6 और रविंद्र जडेजा ने 80 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को लेकर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन कहते हैं,
ये तो होना ही था क्योंकि दो दिन की बढ़िया बैटिंग के बाद कोई भी इंडियन पिच वो हमेशा स्पिनर्स की तरफ होती चली जाती है और अश्विन जिस फॉर्म में है और साथ में रविंदर जडेजा जिस स्पीड से गेंदबाजी करता है तेज, सेटल होने नहीं देंगे। और न्यूजीलैंड की टीम में भी सिवाय केन विलियमसन के कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, तो उनके लिए बचे रहना, एक आधी पारी हर मैच में कोई ना कोई खेलता है, वो हो सकती थी। पर जहां तक मुझे अंदाजा था ऐसा ही कुछ होगा, वैसा ही हुआ है।
अब भारत के पास कुल मिलाकर 276 रनों की बढ़त है और उसके 10 विकेट सुरक्षित हैं।
तो ये तो रही क्रिकेट की बात। आदेश कुमार गुप्ते स्टूडियोज में हैं और उनके पास खबर है कुछ जीतू राय कोई पदक जीत के लाए हैं।
जी देखिए, भारत के अनुभवी निशानेबाज जीतू राय भले ही रियो ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। जीतू राय ने फाइनल में सर्बिया के दमिर मिकिच को फाइनल में 28.3 के मुकाबले 29.6 अंकों से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन विश्व कप फाइनल के बाद हुआ। विश्व कप फाइनल में पहुँचने वाले सभी निशानेबाज इसमें हिस्सा ले सकते थे, जिन्हें 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल में से किसी एक स्पर्धक को चुनना था। तो जीतू राय के हौसले जरूर बुलंद होंगे। उधर आज निकाह रहेंगी भारत की कबड्डी टीम पर, जिसका मुकाबला बांग्लादेश से है। इससे पहले भारत ने एक मुकाबला जीता है, एक हारा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के पंपोर इलाके में चरमपंथियों और सुरक्षाबलों के बीच आज सुबह से जारी मुठभेड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से अलग नहीं होंगे। रूस ने सीरिया के टार्टस इलाके में स्थायी नौसैनिक अड्डा बनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में जन्मे ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के बेंगट होमस्ट्रोम को इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तालिबान सूत्रों के अनुसार एक प्रभावशाली सैन्य कमांडर कारी अजमल पूर्वी अफगानिस्तान में मारे गए हैं। चीन के पर्यावरण जांचकर्ताओं ने जांच में पाया है कि देश के कम से कम 170 स्टील फर्म राष्ट्रीय प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। और दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का उत्पादन संभवतः रोक दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।